نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دور قرآن 2023 DQ 2023. آج ہم اس میں سے پارہ نمبر 11 کریں گے 11 جس کا نام ہے یا تذیرون اور وہ عذر کریں گے یہ نہیں کہا کہ یا زیرون تا لگ کے باب افتعال آ گیا بڑی ہی شدت سے عذر کریں گے نام بتا رہا ہے کہ یہاں وہ لوگ ہیں جو تبوک سے پیچھے رہے تھے سستی کی وجہ سے کمزور ایمان کی وجہ سے اپنے گھر مال اور اپنی کھڑی فصلوں کے نقصان سے بچنے کی وجہ سے یا سفر کی صعوبتوں سے بچنے کی وجہ سے یا آگے سے کچھ نہ ملنے کی امید کی وجہ سے یعنی آگے سے ملنا کچھ نہیں اس وجہ سے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جھوٹے تھے سست تھے اور اس میں جو تھیم ہم لیں گے وہ بہت اہم ہے عظمت صحابہ میں وقافاً عند کتاب اللہ یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اللہ کی کتاب کا کوئی حکم آ جائے چاہے وہ کسی سے نہ بولنے کا حکم ہو جو اس بارے میں ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں کہ جن نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی نہ جانے کی وجہ کو جھوٹ سچ میں نہیں بدلا بلکہ انہوں نے کیا کیا تھا تین صحابہ کا تذکرہ آئے گا اس میں اور یہاں بھی صحیح دیکھ لیجئے کہ وہ اس پارے کی شخصیات بھی ہیں یعنی ساتھ ہی بتا دیتی ہوں مرارہ بن ربیع کعب بن مالک ہلال بن امیہ اور ابو خزمہ یہ چار اس پارے کی شخصیات ہیں ان کے بارے میں جہاں آیتیں آئیں گی ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے ان میں سے جو اوپر کے تین لوگ ہیں انہوں نے سچی توبہ کی تھی اور اس توبہ کی وجہ سے ایک اس کا ایک حصہ تھا کہ سوشل بائیکاٹ اور صحابہ کرام وقافاً عند کتاب اللہ کی روشنی میں اتنا اس حکم پہ جم گئے کسی نے ان سے بات ہی نہیں کی جب انہوں نے پوچھنے کی کوشش بھی کی کہ کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا کہ اللہ نوز دی بیسٹ صحابہ کرام اللہ کے کتاب کے کسی حکم کو سن کر ایسے اس پہ عمل کرتے تھے کہ جیسے لوگ اعراض کرتے ہیں اب آپ میں سے بہت سارا کریلس وقافاً بڑا نیا ہوگا اس کو اپوزٹ دے دوں ایک سیکنڈ میں سمجھ جائیں گے اعراض قرآن میں کتنی دفعہ یہ لفظ آتا ہے اعراض موریدون منہ پھیرنے والے نادان لوگ ہے نا بالکل جس طرح کچھ لوگ قرآن کی ہر بات سے اعراض کرتے ہیں یا تو قرآن سننے سے اعراض کر لیتے ہیں دیکھیں دو میں سے ایک کام ضرور ہوگا بھی لکھ لیں یا تو قرآن سننے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بدلتے جائیں گے انشاءاللہ بولیے اور یا پھر آپ قرآن سننا چھوڑ دیں گے کیونکہ مستقل کچوکے نہیں کو برداشت کر سکتا کچھ اگلے 11 پارے اب نہیں سنیں گے معاف کریں مجھے اللہ اگر میں نے ان کا دل توڑا ہے اور کچھ سنتے بھی رہیں گے اور آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے بدلتے جائیں گے جو سنتے رہیں گے نا ایک دن وہ صحابہ کی طرح وقافاً عند کتاب اللہ ہوں گے یعنی اعراض کرنے کی بجائے کتاب کی باتوں کو سن کر عمل کرنے لگیں گے قرآن پاک کی ایک آیت ہم آگے پڑھیں گے خذ الاوام بالعرف واردن الجاہلین درگزر کرو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو اور جب شیطان تمہیں کوئی وسوسہ دے دے یعنی کوئی ایسی بات تمہارے سامنے آنے لگے تو فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم پھر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ کیونکہ وہ سنتا بھی اور جانتا بھی ہے اس آیت کے اندر یہ جو لفظ ہے نا واردن الجاہلین اس پہ ایک واقعہ آتا ہے یہ آپ کو سنا دوں گی تو آپ کو وقافاً عند کتاب اللہ کا مطلب سمجھ آئے گا واقعہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کا ہے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا عیینہ بن حسن بن حذیفہ مدینہ آئے کوئی بھی تھے آپ نام نہ یاد رکھے اور اپنے بھتیجہ الحر بن قیس کے مکان پر ٹھہرے अल हुर बिन कैस इन लोगों में से थे जिनको उमर अपने करीब जगह देते थे, यानी ही वॉज वेरी क्लोज टू हिम, बिलवड थे। होते ना कुछ लोग आपके करीबी, सीक्रेटरी, सेक्रेटरी जिसको आप कहते हैं, कहने लगे सर आप मुझे उनसे मिलवा तो दो। वो इनके मशीरों में से थे, शुरा में से थे। वो जैना ने अपने भतीजे से कहा है, मेरे भतीजे तुमको मीरुल मोमिनीन के हम बड़ी कुर्बत हासिल है, मेरी इनसे मुलाकात तो करा दो। यानी कुछ लोग रश करते हैं आप पे कि आप इतने करीबी हैं कि आप बात भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बैठते भी, आपकी अप्रोच भी है, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स भी हैं, हमें एक दो सलाम करा दें, और एक आप हैं कि महीनों हाल ना पूछें किसी का, बात ना करें। फ़र्क तो होगा ना, तो आपको ये बात तो समझ आ रही है ना। आज किसी सियासी लीडर को समझ लें या किसी मजहबी रहनुमा को समझ लें। खैर, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं बात कर देता हूँ। उन्होंने अलहुर से उमर की मुलाकात की इजाज़त मांगी, उमर ने दे दी, उनको कोई एतराज़ नहीं था। उन्होंने कहा ने दो। उजैना जब उमर के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, ए खत्ताब के बेटे, खुदा की कसम तुम हमको ना कुछ माल देते हो ना हमारे दरमियान इंसाफ करते हो। यानी गए और जाके शिकायत लगा दी लोगों के, इसलिए तुम नंबर नहीं देते, इसीलिए तुम जाने नहीं देते, पास नहीं आने देते, वो नहीं वो नहीं। खैर, हज़रत उमर ये सुनकर गुस्से में आ गए, इन पर इकदाम करना चाहा। उस वक्त हुर बिन कैस ने इनसे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला ने कुरान में अपने नबी को ये हुक्म नहीं दिया, खुज़ लफ़वामुर बिलुर्फ़िवार एदनिल जाहिलीन व इम्मा यन्ज़गन्ना का, क्या अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया कि जाहिलों से उलझिए नहीं और उनको जाने दीजिए। रावी कहते हैं कि खुदा की कसम, इसके बाद उमर ने ज़रा भी तजावुज़ नहीं किया जबकि उन्होंने कुरान की आयत इनके सामने पढ़ दी। और फिर उनका कमेंट सुनिए, कहते हैं कि वल्लाही मा जावज़ाहा उमर हीना तलाहा अलैही वकाना वक्काफन इंद किताबुल्लाह। और उमर अल्लाह की किताब पर बहुत ज़्यादा रुक जाने वाले थे। ये थी रदी अल्लाह अन्हुम वरदुअन बनाने वाली सिफत अस्हाबे रसूल की, कि जहाँ अल्लाह की किताब की कोई बात आ जाती वो वहीं ऐसे होते जैसे रेड लाइट पे आप रुकते हैं, लिख लें अल्लाह का हुक्म साहबा के लिए रेड लाइट होता था, स्पीड पहले ही स्लो कर लेते थे क्योंकि उनको समझ आ रही होती थी कि ये हुक्म ख़त्म होने वाला है, वो वहाँ रुक जाते थे। अल्लाह का हुक्म सामने आते ही अपने हाथ और अपनी ज़ुबान, अपने पाँव को बिला ताखीर रोक लेते थे, हैंड ब्रेक लगा लेते थे आपकी मेरी ज़ुबान में। एक दलील, एविडेंस कह लें, कुरान की आयत भी हो सकती है, सुन्नत भी हो सकती है, नबी का अमल भी हो सकता है, तकरीर भी हो सकती है, खामोशी भी हो सकती है, एक दलील हक की उनके सामने आती, उनके पाँव के अंदर बेड़ी बन जाती थी, वहीं रुक जाते थे, ख्वाहिश के पीछे कोई और ना हो। ऐसे कई वाक़यात आपको मैंने पहले भी सुनाए, मैं हज़रत उमर ने कानून बना दिया 500 दिरहम से ज़्यादा हक मेहर नहीं लगाना, और एक औरत उधर से उठ के आई और कहने लगी, उमर ये आपको किसने हक दिया, वक्काफ़न इंदा किताब अल्लाह, फ़ौरन वापस आए, कहा आज के बाद जो जितना देता है देता रहे। हज़रत उमर अपने दौरे खिलाफत में रात को गश्त करते थे कि मैं अपनी आवाम और अपनी रया का हाल तो पूछूं बेचारे किस हाल में। एक घर के अंदर से किसी औरत के कुछ गुनगुनाने की आवाज़ आई, कान लगाए तो वो किसी मुजाहिद की बीवी थी जो अपने शौहर को मिस कर रही थी। अगले दिन उमर ने पता करवाया तो पता क्या चला कि उसका शौहर कई माह से सरहद पे है, यानी हुकूमत की तरफ से जॉब पे, सिक्योरिटी पे या पुलिस पे, फौज में था। अब इस बात पे उमर के अंदर इर्तियाश आया, अपनी बेटी हफ्सा को बुलाया क्योंकि शरा में शर्म नहीं है, कहने लगे कि ये तो बता एक औरत कितनी देर तक अपने मर्द से दूर रह सकती, इशारा था उसकी जिनसी तलब और उसकी इमोशनल नीड्स की तरफ। तो कहने लगी 4 माह। 4 माह के बाद फितरी तौर पे एक औरत इस कुर्ब को पाना चाहती है। अगले दिन उमर का मिंबर था और एक नया लॉ पास हुआ, क्या कि आज के बाद जो शादीशुदा मुजाहिद है उसको सरहद पे 4 माह से ज़्यादा नहीं रोका जाएगा, उसको वापस भेजा जाएगा छुट्टी पे। ये होते हैं वक्काफ़ानिंदा। एक औरत के जज्बात पे उमर कानून बदल दे, वक्काफ़ निंदा किताबुल्ला। आज हम कैसे हैं, मैं, अना, गुस्सा। आप देखिए, ये इतनी बड़ी खूबी है जिसका मुजाहरा सहाबा कराम के जरिए दुनिया के सामने आया। जब एक बंदे के अंदर गुस्सा भड़क उठता है ना, और जब उसके लिए मैं का मसला पैदा हो जाता है ना, जैसे हजरत उमर को गुस्सा तो आया होगा ना, एक बंदे ने उनके मुंह पे बैठ के गलत बात कहनी शुरू कर दी, तो ऐसे वक्त में तो लोग ना दलील सुनते हैं, ना बीवी की बात सुनते हैं, ना माँ बहन की बात सुनते हैं। ऐसे खून तराते हैं आंखों में कि वो पकड़ के मारना शुरू कर दे। मैं रुक रुक के बोलूँगी, आप लिखना चाहें तो लिख लें। सहाबे कराम वो लोग थे जिनको सख्त हैजानी सूरत में, हैजान कहते हैं स्टिमुलेटेड, हैजान बरपा होता है, गुस्सा, इर्तियाश, इमोशनल। चले इमोशन में तो बंदा गुनाह भी कर देता है, जितने गलत काम होते हैं अमूमन इमोशनली तो होते हैं। तलाकें कितनी गुस्से में नहीं होती? यदि साहब वो लोग थे जिनको अपने सख्त से सख्त इमोशनल अपसेट के दौरान भी कुरान की सिर्फ एक आयत खामोश करवा देती थी। अल्लाह का हुक्म जब उनके सामने आता था ना इस दुनिया में, तो वो उसको लफ्जी हुक्म नहीं समझते थे, वो समझते थे हमारे सामने अल्लाह खड़ा है अपनी पूरी कुव्वत और पूरी ताकत के साथ। किसी से इख्तलाफ पैदा होना और उसके साथ अदल का रवैया बरतना, ये तो आम बात है। लेकिन जो बंदा आपकी अना पे चोट लगाए, उसके मुकाबले में सब्र कर लेना और गुस्से में भड़कने की बजाय गुस्से पे पानी डाल देना। कोई आपकी तहकीर कर रहा है, कोई आपको जलील कर रहा है और आप उसे इंतकाम नहीं ले रहे, ये थे वो दर्जे, वो असाफ के जिसके लिए रदी अल्लाह अन्हु व रदवान थे। सहाबा किराम इस क्राइटेरियन पे पूरे उतरे। इस बारे में मैं इंशाल्लाह आपको गाहे गाहे साथ साथ बताती जाऊंगी कि सहाबा ने क्या किया। बस एक हुक्म काफ़ी था, स्टॉप, किफ, अरबी में कहते हैं किफ, स्टॉप, किफ, खड़े हो जाते थे। हमारे यहाँ तो फतवे, बातें, दलाइल, इज्तहाद, उसने ये कहा, उसने ये कहा। याद रखिए, अपनी ज़िंदगी के कसूल बनाएं। हदीस के मुकाबले में किसी का कॉल नहीं चलेगा, चाहे वो किसी सहाबी का क्यों ना हो। अल्लाह ताला आपको मुझे ऐसा ईमान दे। आगे इस बारे के थीम में भी एक बड़ी खूबसूरत बात है जिसको इंशाल्लाह वो आयत आएगी तो आपको साथ ही लेके चलूँगी। नोट करना चाहें तो भी नोट कर लीजिए। नेकी करना आसान, लेकिन नेक बनना मुश्किल क्यों? कोई बात वाजे हो रही है? ये जहाँ आएगा पारा पूरा सुनिए, फिर आपको मिलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ शुरू का पारा नहीं सुनाना, पूरा पारा सुनाना है। पारे की दुआ ले लीजिए, चूँकि सूरत तौबा और इसमें तौबा का तज़किरा है, तो इस्तग़फ़ार से मुतल्लिक एक हदीस है जिसमें एक दुआ भी आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिवायत है, क्या कहा आपने? मन काला अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, गुफिर लहू व इन काना फर्रा मिनल ज़ख़्फ़ी। सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी, यानी गुलाम थे अल्लाह के नबी के ज़ैद, उनसे रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के नबी को ये फरमाते हुए सुना, जिसने अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह कहा, इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे अगरचे वो मैदाने जंग से ही क्यों ना भाग गया हो, कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हुआ हो। तो इस पूरे बारे में इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को देखते रहेंगे। अब हम चलते हैं सूरत तौबा की आयत 94 पे, यहाँ से सूरत के एंड तक नबन 29 है, और इसके बाद फिर इस बारे में पूरी सूरत यूनस और फिर सूरत हूद की इब्तदाई आयात है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यातज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैह। पहला रुकू है आयत 94 से 99 है, अल्लाह ताला और आखरत पर ईमान की कुछ बातें हैं, आइए देखते हैं। ये लोग तुम्हारे सामने उज़र पेश करेंगे, जब तुम इनके पास जाओगे आप कह दीजिए कि ये उज़र मत तराशो, हम कभी भी तुमको सच्चा ना समझेंगे, और अल्लाह ताला तुम्हारी खबरें हमें दे चुका। क्या पता चला कि अब हमारे सामने सच्चे ना बनो, अल्लाह तुम्हारे हाल हमें बता चुका और आइंदा भी अल्लाह ताला और इसका रसूल तुम्हारी कारगुजारी देख लेंगे, फिर इसी की तरफ लौटाए जाओगे जो पोशीदा और जाहिर सब का जानने वाला है। फिर वह तुमको बता देगा जो कुछ तुम करते थे। हाँ, वो अब तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाएंगे जब तुम इनके पास वापस जाओगे। बस तुम इनको इनकी हालत पर छोड़ दो, वो लोग बिल्कुल गंदे हैं। इनका ठिकाना दोजख है इन कामों के बदले जो वो किया करते थे। ये इसलिए कस्में खाएंगे कि तुम इनसे राजी हो जाओ। अगर तुम इनसे राजी हो भी जाओ तो अल्लाह ताला ऐसे फासिक लोगों से राजी नहीं होता। इन आयात पे एक वाकया है। अल्लाह के नबी ने जब गज़वे तबूक के मौके पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो को मदीना में खलीफा बनाया तो उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़े जाते हैं। ज़रा नोट कीजिए, ये भी एक मामला था। कुछ पीछे रह रहे हैं और कोई अपने पीछे रहने को कहते हैं आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़ रहे हैं। आपने फरमाया कि क्या तुम इस बात से खुश नहीं होते कि तुम्हारा दर्जा मेरे पास ऐसा ही हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के पास हारून अलैहिस्सलाम का था, लेकिन मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 1639 नंबर की। तो क्या पता चला, कुछ लोग पीछे रहते हैं और कुछ पीछे रहने पे परेशान होते हैं। आगे आयत 97, देहाती लोग कुफर और निफाक में बहुत सख्त हैं और इनको ऐसा ही होना चाहिए कि इनको इन काम का इल्म ना हो जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाए हैं। और अल्लाह ताला बड़ा इल्म वाला बड़ी हिकमत वाला है। और इन देहातियों में से बास ऐसे भी हैं जो कुछ खर्च करते हैं इसको जुर्माना समझते हैं, और तुम मुसलमानों के वास्ते बुरे वक्त के मुंतजर रहते हैं। बुरा वक्त इन पर आ ही पड़ने वाला है और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। और बस अहले देहात में ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला पर और कयामत के दिन पर ईमान रखते हैं, और जो कुछ खर्च करते हैं इनको इन दल्लाह कुर्ब हासिल करने का जरिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का जरिया बनाते हैं। याद रखो कि इनका ये खर्च करना बेशक इनके लिए कुर्बत का सबब है, यानी मूजिबे कुर्बत है। इनको अल्लाह ताला ज़रूर अपनी रहमत में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला बड़ी मगफरत वाला बड़ी रहमत वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। कैसे अल्लाह ताला हमें इन आयात में सहाबा में से ख़ास तौर पे अब कुछ लोग ऐसे कि जिनका ताल्लुक बाहर मदीना के सबब से था ना, उनकी बात पेश कर रहे हैं। आप देखिए कि मदीना की बस्ती के इर्द गिर्द छोटे छोटे इलाके थे, तो आम तौर पे जो देहाती लोग होते हैं ना उनके पास इल्म नहीं होता। देखने में हमें वो गरीब लगते हैं और गरीब होने की वजह से हम उनको बड़ा नेक समझते हैं, हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता। शऊर की कमी किसी की भी बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो शहर में रहे या गांव में, पैसे वाला हो या गरीब हो। तो अल्लाह ताला ने इन सारी आयात में उज़र करने बहाने करने वालों की बात करके कुछ और चीज़ें हमारे सामने रख दी। और वो क्या थी कि किस तरीके से लोगों के साथ मामला किया जाएगा और उनकी बातों में से किसकी बात को कबूल किया जाएगा और किसकी बात को कबूल नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये है कि अल्लाह ताला इतना खोल खोल के बयान कर रहे हैं फ़लाँ मुनाफिक फ़लानी, तो अब आपको मुझे तो सर्टिफिकेट मिल गया है ना लोगों को मुनाफिक कहने का। आज मैं और आप इन निशानियों को देख कर लोगों को मुनाफिक कह सकते हैं ना। एक मुनाफिक नाम का स्टिकर बना लें, स्टैम्प दें, नहीं कर सकते क्योंकि वही का तार टूट चुका है। लिखिए ये बात, क्योंकि आज हमारे कल्चर में लफ्ज़ काफिर और मुनाफिक बेदरेग इस्तेमाल होता है। अल्लाह के नबी के ज़रिए जिस बात की खबर हो गई थी तो हो गई थी, अब आप और मैं नहीं कर सकते। बास लोग नबी सल्लम की जमात में दाखिल ज़रूर होते थे ये कहकर सोचकर आपके साथ लगे रहेंगे ना तो हमें आप वाले बेनिफिट भी मिलेंगे, लोगों में इज्जत भी मिलेगी। इन आयात में अल्लाह ताला ने उनको ये पैगाम दे दिया कि जन्नत किसी को ज़ाती अमल की बुनियाद पर मिलती है, किसी गिरोह में दाखिल होने से नहीं मिलती। मुनाफिक सब के सब मुसलमानों की जमात में रहते, नमाज रोज़ा भी करते, इसके बावजूद वो जहन्नमी है, क्योंकि कुर्बानियों और हिजरतों के बग़ैर जो नमाज और रोज़ा होता है वो भी कबूल नहीं होता, और ख़ास तौर पे जब हालात तबूक जैसे आने लगे। और असल बात यह है कि जिसके दिल में ईमान का दिया जल गया, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो पूरे का पूरा रोशन होगा। लेकिन जहाँ निफाक का एक कीड़ा आएगा, थोड़े दिन बस सारी टोकरी के सेब जो है वो ख़राब हो जाएंगे। और जहाँ अरबियों की बात है तो हमारी मासियाँ, हमारी मेड्स, वो भी इंसान है, उनकी भी हिदायत की फिक्र कीजिए। वो लोग जो हमारे लिए इतनी सहूलतें करें, सुबह बेचारियाँ 8-9 बजे आकर घर में से निकलकर शाम तक आपके साथ रहें, आपके माली बाबे, आपके ड्राइवर सारा सारा दिन धूप में बैठे आपका इंतज़ार करें कब बेगम साहबा बाहर निकलें और वो गाड़ी लाकर दरवाज़ा खोलें। क्या उनको इस किताब की ज़रूरत नहीं, उनको हिदायत की ज़रूरत नहीं? उनका वक्त कितना कीमती है। अपनी मेड्स और एक भी सीढ़ी, घरों में एक दो तो होती है ना, कोई किसी भी जगह, आप किसी ऑफिस में हैं वहाँ आपके साथ कोई डोरमैन है, कोई चाय पानी बनाने वाला है, किसी भी तरह उनकी हिदायत का ज़रिया बन जाए। आपके पास आकर उनको सिर्फ नोट ना मिले, कपड़े ना मिले, दौलत ना मिले, वो तो हम उनको उनकी मेहनत का देते हैं और आप ही एक लिमिटेड ही देंगे ना जो आपके हैंड में है, जो आप कर सकते हैं। क्या हम फ्री में नहीं दे सकते? आप कहते हैं कि बाहर की दुनिया में जो मेड्स हैं ना वो पर आवर चार्ज की जाती हैं, तो कुछ साथियों की मिसाल मुझे हमेशा ही याद आती है कि वो अपनी मेड को 4 घंटे के लिए बुलाती, पैसे तो 4 घंटे के देंगी, 3 घंटों में काम करा लेती जल्दी से और 1 घंटा उनको अपने साथ बिठा कर तो क्लास दिलवाती, जो खुद सुनती थी साथ सुनाती। मेड को और क्या चाहिए? पैसे तो मिल रहे हैं और मज़े से साथ बैठी सुन रही, और वो इतनी अच्छी फिर बाद में उसके लिए साबित हुई। देखिए चोरियां नहीं करेंगे ये लोग अगर सिर्फ मायदा सुन लेंगे, आखिरत और अल्लाह की पकड़ का यकीन कैमरों से बेनियाज कर देगा, फिर आपको इनकी तलाशियां नहीं लेनी पड़ेंगी कि कैमरे में तो ये दिख रहा है तो वो दिख रहा है। तो अपने घर के इन मुलाजिमों और आपके जो भी डिपेंडेंट्स हैं, हर एक के मुलाजिम नहीं भी होंगे लेकिन जहाँ जो कुछ भी है उसको सामने रखते हुए उन तक भी इस पैगाम को पहुँचाइए। अब तो इतना आसान हो गया, आप देखिए स्त्री करती है ना एक औरत, कभी कहीं मर्द भी कर सकता है, आप उसको साथ को सीडी चला दें, आप सीडी की भी ज़रूरत नहीं, एक लिंक व्हाट्सएप यूट्यूब का लिंक, आप कहते हैं इनको नेट नहीं देना, आप उनको सेव कर दें, आप उनको किसी ग्रुप में डाल दें, अपने नेट से यूज़ करा के वो सब डाउनलोड करा दें उन्हें कि अच्छा आज के कपड़ों के दौरान तुमने ये एक फ़ाइल सुन के आना है, फिर उससे 2-4 सवाल जवाब भी कर लीजिए, क्या पता कि हमारे बच्चे तो ना हमारी सुने और ये सुन लें। बहरहाल सहाबा और मुनाफिकीन का एक फ़र्क आपके सामने है क्योंकि इस सूरत में आप ये बिल्कुल पीक पे आया हुआ टॉपिक है। सहाबा उज़र नहीं करते थे, मुनाफिक उज़र बहानों में माहिर थे। मरदू का लफ्ज़ आएगा आगे, ताक चाल। एक होता है ना चोर, बड़ा कच्चा चोर होता है, पकड़ा जाता है, कुछ बड़े होशियार होते हैं, हाथ की सफाई से चोरी कर जाते हैं, मुनाफिक ताक थे चोरी में, ईमान की चोरी थी उनकी। फिर सहाबा झूठी कस्में नहीं खाते थे, मुनाफिक हर बात पर झूठी कसम खाते थे। सहाबा कराम के लिए अल्लाह ताला की रज़ा मुकद्दम थी, मुनाफिकीन लोगों की खुशी को तरजीह देते थे। सहाबा नरम खू और खुदूदुल्लाह से बाखबर थे, जबकि मुनाफिकीन सख्त दिल और खुदूदुल्लाह से बेखबर थे। ये पूरी 94 से 99 आयात का खुलासा आपको मिल गया। अल्लाह की रज़ा पाने वाले अमाल इसमें से जो आपके मेरे अपने लिए हैं, आयतों के साथ आपके सामने लिखे हुए हैं। अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाना है, अल्लाह की राह में खर्च करना है, बहाने नहीं बनाने, इंसानों को राज़ी करने के लिए कस्में नहीं खानी, कुफर और निफाक से बचना है और अल्लाह की हुदूद को जानना है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। आगे अजी खूबसूरत तरीन हिस्सा इस बारे में से 100 से 110 आयात, रुकू नंबर 2 है। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजरीन, और इसका टॉपिक है कि हमने भी साबिकूनल अव्वलून बनने की कोशिश करनी है, और जो मुहाजरीन और अनसार साबिक और मुकद्दम हैं यानी आगे बढ़ने वाले फर्स्ट वन, और जितने लोग इखलास के साथ इनके पैरोकार हैं ये हैं ताबईन, अल्लाह इन सब से राज़ी हुआ और वो सब उससे राज़ी हो गए। ये है आपके साल के दौरे कुरान की मेन थीम आयत, रदी अल्लाहु अन्हु व रदू अन, और अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बाग मुहैया कर रखे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, दुआ कीजिए अल्लाह आपको मुझे ये कामयाबी दे दे। और जो कुछ तुम्हारे गिर्दो पेश वालों में और कुछ मदीने वालों में ऐसे मुनाफिक हैं कि निफाक पर अड़े हुए हैं यानी जिद में आ चुके हैं, आप इनको नहीं जानते, हम इनको जानते हैं, हम इनको दोहरी सजा देंगे, फिर वो बड़े भारी अजाब की तरफ भेजे जाएंगे। और कुछ और लोग हैं जो अपनी खता के इकरारी हैं, जिन्होंने मिले जुले अमल किए थे, कुछ भले और कुछ अच्छे बुरे। आप बताइए कौन है? ये मैं हूँ, ये हम हैं। अल्लाह अकबर, अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। अल्लाह से उम्मीद है कि इनकी तौबा कबूल फरमाए। बिला शुबा अल्लाह बड़ी मगफरत वाला, बड़ी रहमत वाला है। आप इनके मालों में से सदका लीजिए, जिसके ज़रिए से आप इनको पाक साफ़ कर दें, और इनके लिए दुआ कीजिए। बिला शुबा आपकी दुआ इनके लिए इत्मीनान का सबब, यानी मूजिबे इत्मीनान है, और अल्लाह ताला खूब सुनता खूब जानता है। क्या इनको ये खबर नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और वही सदक़ात को कबूल फरमाता है, और ये कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने में कामिल और बहुत रहीम है। कह दीजिए कि तुम अमल किए जाओ, तुम्हारे अमल अल्लाह खुद देख लेगा, और इसका रसूल और ईमान वाले भी देख लेंगे, और ज़रूर तुमको इसी के पास जाना है जो तमाम खुली और छुपी तमाम चीज़ों को जानने वाला है। बस वो तुम्हारा किया कराया तुमको बतलाएगा। और कुछ और लोग हैं जिनका मामला अल्लाह का हुक्म आने तक मुलतवी है, इनको सज़ा देगा या इनकी तौबा कबूल करेगा, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला है, बड़ा हिकमत वाला है। और बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने इन अगराज के लिए मस्जिद बनाई कि ज़रर पहुँचाएँ और कुफ्र की बातें करें और ईमानदारों में तफरीक डाल दें, और इस शख्स के क्याम का सामान करें जो इससे पहले से अल्लाह और रसूल का मुखालिफ है, और कस्में खाएंगे कि सिवाय भलाई के हमारी कोई और नीयत ना थी, और अल्लाह गवाह है कि वो बिल्कुल झूठे हैं। देखिए इनके झूठे होने पे अल्लाह की गवाही है। आप इनमें कभी खड़े ना हों, अलबत्ता जिस मस्जिद की बुनियाद अव्वल दिन से तकवा पर रखी गई है वो इसके लायक है कि आप इसमें खड़े हों। इसमें ऐसे लोग हैं यानी आदमी कि वो खूब पाक साफ होने को पसंद करते हैं, और अल्लाह खूब पाक होने वालों को पसंद करता है। फिर आया ऐसा शख्स, यानी फिर क्या ऐसा शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह से डरने पर और अल्लाह की खुशनुदी पर रखी हो, या वो शख्स के जिसने अपनी इमारत की बुनियाद किसी घाटी के किनारे पर के जो के गिरने ही को हो रखी हो, फिर वो इसको लेकर आतिशे दोजख में गिर पड़े, और अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को समझ ही नहीं देता। इनकी ये इमारत जो उन्होंने बनाई हमेशा इनके दिलों में शक की बुनियाद पर कांटा बनकर खटकती रहेगी। हाँ, मगर इनके दिल ही अगर पाश पाश हो जाएं तो खैर, और अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला बड़ी हिकमत वाला है। बहुत ही खूबसूरत रुकू है। आपने रुकू के बिल्कुल शुरू में ही आयत 100 में और उसके बाद 102 में ताबईन और सहाबा कराम में से बेहतरीन गिरोह मुहाजरीन और अंसार का तذکرہ देखा, यानी इसमें अल्लाह ताला ने सहाबा और ताबईन की तहसीन यानी तारीफ़ फरमाई है। कौन थे? साबिकून अल अव्वलून, अल्लाह की रज़ा पर बिला तामल खुशी से अमल करते थे, इखलास के साथ नबी की पैरवी करते थे, और अगर कभी कोई गुनाह हो जाता तो गुनाहों का इतराफ़ करने में भी जल्दी करते थे। आयत 102 की शान नज़ुल में एक वाक़िया है। अबू लुबाबा के बारे में यह आयत नाजिल हुई जब उन्होंने बनु कुरैज़ा से कहा था कि ये ज़िबह की जगह है, और हाथ से अपने हलक की तरफ इशारा किया। पीछे भी एक आयत इनसे मुतल्लिक आपको दी थी, दोनों ही आती हैं तफ़सीर में, आप कोई भी ले लीजिए। इब्ने अब्बास कहते हैं कि वाखरूना से मुराद अबू लुबाबा और इनके असहाब की जमात है जो ग़ज़वे तबुक में शिरकत जिहाद से पहलू तही किए थे, और जब अल्लाह के नबी ग़ज़वे तबुक से वापस हुए तो इन लोगों ने अपने आप को मस्जिद के सतूनों से बांध लिया और कसम खा ली थी कि जब तक रसूलुल्लाह हमें खुद ना खोलें हम ना खोले जाएंगे। और जब ये आयत वाखरू ना तरफू भी जुनू भी हम नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी ने इनको खोल दिया और इनका जंग से कोताही का कसूर माफ़ कर दिया। ये तफसीर इब्ने कसीर से आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह सही बुखारी की एक रिवायत है 6309, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा से तुम में से उस शख्स से भी ज़्यादा खुश होता है जिसका ऊँट मायूसी के बाद अचानक इसे मिल गया हो, हालांकि वो एक चटियल मैदान में गुम हुआ था। और इसमें हकीकत में आपको वो किरदार मिलेंगे जिसमें से इस पारे के तीन हीरोज़ मुरारा बिन रबी और काब बिन मालिक और हिलाल बिन उमैया आते हैं। सूरत तौबा की आयत 106 इन तीन सहाबे कराम की कहानी पे है। हम जब इन सब के किस्से पढ़ते हैं तो हमें तो यकीन ही नहीं आता कि हम भी उसी अल्लाह के सामने जवाब दें जिधर इनको पेश किया जाना है, ये भी उसी जन्नत में जाने के ख्वाहिशमंद है जिसमें हमने जाना है। हुआ क्या था? आप इसमें मुहाजरीन और अंसार से मुतल्लिक बात तो पीछे सुन ही चुके थे। लेकिन यहाँ तो ये वो लोग हैं कि जिनसे तबूक छूट गया, गोया कि उनसे जन्नत छूट गई। लिखिए, कभी कभी नेकी का एक मौका छूटता है तो जन्नत छूट जाती है, भला कैसे। यहाँ तो इतना सफ़र नहीं लोग करते ना, ट्रेनों पे, बसों पे, लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं होती। चलिए जहाज़ पे कभी सफ़र किया हो, सिर्फ 5-10 मिनट के डिले की वजह से फ्लाइट छूट गई। शारे फैसल पे रश था, मुलीर कैंट में फंसे हुए थे, बस एक दो मोड़ था और फिर टाइम ख़त्म हो गया। कितना अफसोस। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वो फ्लाइट नहीं मिली, अगली मिल जाएगी, शायद कंपनसेट ही कर दे, और नहीं है तो अगली टिकट ले लेंगे आप। लिखिए, अगर किसी एक नेकी से पीछे रहने की वजह से मेरी जन्नत की फ्लाइट मिस हो गई तो क्या होगा, वहाँ क्या होगा। साहबे किराम को जो रदी अल्लाह अन्हो का ये टाइटल मिल रहा है, इसमें या तो वो महाजिर बनने की बुनियाद पे मिला था या अंसार बनने की कीमत पे मिला था। वो यकसू थे, वो फोकस थे, उन्होंने हर मौके पे लब्बैक कहा था। वसाइल थे तो अल्लाह के लिए पेश कर दिए, और अगर मसाइल थे तो उसको खुद हल करने की कोशिश की। साहबा कराम अव्वल दौर में तो ऐसे थे ही, उसके बाद के ताबईन और उसके बाद फिर तबा ताबईन में खैरुल कुरून करनी, फिर सुम्मल लजीन यलू नहुम, फिर उसके आगे आगे ये ईमान की शम्मा धीमी होती गई। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ लोग ऐसे थे कि जो पीछे तो रहते थे लेकिन फिर आगे बढ़ जाते थे। और जो रदी अल्लाह अन्हों की बात है ना, अल्लाह ने उनको कुछ ऐसे हालात से गुजारा कि जिसके बाद उनका वो गुनाह माफ़ हो गया। आप इस सूरत तौबा के बिल्कुल अब आखिरी पोर्शन में मुख्तलिफ तबकात से मिलने वाले हैं। अब देखिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी तबीयत में शर नहीं होता, मामूल के मुताबिक दीनी अमल भी करते हैं, 1 2 3 करके लिखते जाए, आम काम करेंगे, लेकिन जब दीन का कोई ऐसा तकाजा सामने आता है जिसकी चोट उनकी ज़िंदगी पे पड़ती है, अपना कुछ छोड़ना पड़ता है, कोई गेटअप छोड़ना पड़ता है, कोई अपने ज़िंदगी, माल, वक्त, अपने स्टेटस से पीछे होना पड़ता है, तो या तो कुव्वते फैसला में कमज़ोरी होती है या दुनिया में मशगूलियत जिसकी वजह से वो दीन के रास्ते में अपना हिस्सा अदा नहीं कर पाते, तो रुकावट बन गई। ऐसे लोग कसूरवार तो होते हैं, लेकिन उनका कसूर उस वक्त माफ़ कर दिया जाता है जबकि याद दहानी के बाद वो गलती का इतराफ़ कर लें और शर्मिंदगी के साथ दोबारा दीन की तरफ लौट आए। और याद रखिए कि किसी को आप गलती का एहसास दिलाएं और वो इतराफ़ और कर ले और शर्मिंदा हो, इससे पता चलता है कि उनके अंदर खैर है। वो एहसास गुनाह को धोने के लिए फिर अपना कुछ महबूब माल या उसका कुछ हिस्सा अल्लाह के रास्ते में पेश करते हैं कि अल्लाह हमारा ये माल कबूल कर ले, नबी को ला ला कर दे देते थे ताकि उनके अंदर का जो गिल्ट था ना नेकी से पीछे रहने का वो दूर हो जाए। जैसे काब बिन मालिक ने तौबा की कबूलियत के बाद अल्लाह के नबी से कहा था, मैं अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूँ क्योंकि आज के दिन से बड़ी खुशी मुझे ज़िंदगी में कभी ना मिली। तो पता क्या चला कि अल्लाह के यहाँ असल बुराई किसी बंदे की गलती करना नहीं है, गलती पे कायम रहना है। और जो गलती करने के बाद इसकी तावीलें ढूंढेगा वो बर्बाद होगा, और जो गलती का इतराफ़ करेगा वो अपनी इसलाह भी करेगा और रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन के गिरोह में शामिल हो जाएगा। जब गलती होती है ना उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, टू पॉसिबिलिटीज़। एक ये है कि वो बंदा गलती करके इतराफ़ कर ले, कन्फेस कर ले, और दूसरा ये कि और सख्त हो जाए, स्टबन, ढीठपन। जो गलती पे इतराफ़ कर लेगा उसके अंदर तवाज़ो आएगी, उस पर अल्लाह की और ज़्यादा रहमतें होंगी, और जो सख्त हो जाएगा गोया कि अल्लाह के गज़ब के रास्ते पे जाएगा। वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए जितनी मर्जी झूठी तावीलें कर ले, बल्कि वो कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, इसी तरह एक गलती को निभाने के लिए बहुत सी गलतियाँ करता रहेगा। इसीलिए पहला शख्स अल्लाह की रहमतों में होगा और दूसरा अल्लाह की सज़ा में होगा। हमने इसमें जिन लोगों के बारे में पढ़ा है उनमें काब बिन मालिक अपना ये किस्सा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि मैं खुशहाल था, बल्कि आप पढ़िए, आप रही को मखतूम खोल लीजिए या तजलियात नबूवत, या कोई भी तफसीर की बुक खोलकर इनायतों में किस्सा पढ़े। और मुझे जो फेवरेट लगता है वो बुखारी में से काब बिन मालिक की, तीन बड़े बड़े सफ़ों पे ये किस्सा है, उसको पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि कुछ लोग जब पीछे रहते हैं तो उसके बाद वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। पीछे रहकर एतराफ़ करके दुनिया में खुद को सज़ा के लिए पेश करके ये वो लोग थे जो आगे बढ़ गए, और अल्लाह ताला ने फिर इनको अपनी रज़ा के सर्टिफिकेट दे दिए। आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे, इनका बेटा इनको हाथ पकड़कर मस्जिद ले जाता था, उस वक्त इन्होंने एक किस्सा सुनाया था कि जब नबी वापस आए और लोग झूठे सच्चे उज़र पेश करके पास हो रहे हैं, तो मेरे भी दिल में आया था कि मैं ये कर दूँ, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं अल्लाह के यहाँ तो नहीं बचूंगा, और जाके अल्लाह के नबी को सच सच बता दिया, अल्लाह के नबी मेरे पास कोई उज़र नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ कि बस मेरे से सुस्ती हो गई। अल्लाह के नबी ने कहा, जब तुमने अपना मामला अल्लाह के पास डाल दिया तो इंतज़ार करो। बाहर आए तो कहते, मेरे रिश्तेदारों ने मेरा मजाक उड़ाया, और ये शायर थे और बहुत खूबसूरत बात करते थे। उन्होंने कहा, तेरे जैसे इतने अच्छे बात करने वाले से मैं ये तो उम्मीद नहीं थी, तुम तो बुद्धू रहे, जैसे हम कहते बुद्धू बेवकूफ़ सीधे, क्या हो गया था? ये कहते, एक लम्हे के लिए मेरे दिल में आया कि मैं वापस जाके अल्लाह के नबी से कहूँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा झूठ बोल दूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, कोई और भी है मेरे जैसा, कहा तुम्हारे जैसे दो और भी हैं, मुरारा बिन रबी, काब बिन मालिक और हिलाल बिन उमैया, तीनों की एक ही कहानी थी। अल्लाह ने नबी सल्लम के ज़रिए मैसेज दे दिया कि इनसे सोशल बाइकआउट कर लें। अब तो दाक़त अलैहिम वल अर्दु बिमा रहुबत, ज़मीन अपनी वुसअत के बावजूद इन पर तंग हो गई, मदीना की गलियां इनके लिए वीरान हो गई। ये थे वक्काफ अनिंदा किताब अल्लाह। अल्लाह के नबी ने बस एक दफ़ा कहा, आप में से कोई इनसे बात नहीं करेगा, ख़त्म। फिर जाके पूछना नहीं पड़ा, देखना नहीं पड़ा कि चुपके चुपके कर रहे थे, चुपके कर रहे थे, ऑफ दी टेबल कर रहे थे और ऑफलाइन पे कर रहे थे, एक नहीं बोला। इनके हमसायों ने इनसे पूछा, ये मस्जिदों में जाते नमाजें पढ़ते, कोई इनके सलाम का जवाब ना देता। आप सोचिए, इधर आप आएँ और आप सलाम करें और लोग आपको देख कैसे मुंह फेर ले, कैसे रोना आएगा, लेकिन ये लोग ऐसे ही थे। और वाकई फिर अल्लाह ताला ने इनके साथ वो मामला किया जो किसी के साथ ना हुआ। और उसके बाद फिर जब इनकी तौबा कबूल हुई तो उसके बाद खुशखबरियाँ देने में भी वक्काफ अनिंद अल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा, मोमिन दूसरे मोमिन को उसके अच्छे मामलात में खुशखबरियाँ देता है। ये वाकई फिर उसके बाद खुशखबरियाँ देने में आगे थे, अबू बकर सिद्दीक से लेकर एक से एक। इतनी इनको खुशी हुई थी अपनी तौबा की कबूलियत के ऊपर कि जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने इनको खुशखबरियाँ दे दी। तो जब हम इन सब लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें यकीन आने लग जाता है कि ऐसे लोगों से अल्लाह बहुत राज़ी है। इंशाल्लाह इनकी आयत आगे आएंगी और आप पढ़ेंगे और सुनेंगे भी, लेकिन इस वक्त हम थोड़ी सी बात करते हैं मस्जिद दरार पे। मदीना में मस्जिद नबी भी थी, पहली मस्जिद, और मस्जिद कुबा भी थी। ये दोनों वहाँ की ज़रूरियात को बहुत अच्छी तरह पूरा कर रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी सल्लम के उस दौर में जिसमें नबी खुद भी मौजूद हैं, इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे थे जिनके दिलों में खोट था। उन्होंने एक मरकज़ बनाना था ताकि अपने निफाक को छुपा सकें और बाहर की मूवमेंट्स उधर होती रहें। उन्होंने एक मस्जिद बनाई और नबी सल्लम से लीगलाइज कराने के लिए कहा, जरा आके आप इसकी ओपनिंग करा दें। आप साफ दिल के थे, आपने कहा अभी तो मैं तबूक पे जा रहा हूँ, वापसी पे कर दूंगा। जब आप वापस आए ना तो आपने इससे पहले कि वहाँ आकर कोई नमाज पढ़ते, अल्लाह ताला ने ये आयात उतार दी जो आप अभी पढ़कर आए हैं, जिसका पैगाम क्या है कि हर मस्जिद मस्जिद नहीं होती, कुछ मस्जिदें मस्जिद दरार होती हैं और कुछ मस्जिदें मस्जिद नबी और मस्जिद कुबा होती हैं। असल में ये एक सिंबल भी है, ज़िंदगी की तामीर करेंगे तो इसकी दो बुनियादें हैं, या आप तकवा पे अपनी ज़िंदगी गुजारें या जुल्म पे। तकवा पे जो ज़िंदगी चलती है ना, उसमें सब हक वालों को हक दिया जाता है, उसकी इमारत मजबूत होगी, और जो जुल्म करेगा ना वो हर वक्त ख़तरे में होगा। और मस्जिद दरार जैसी मिसालें कि जिसमें मुसलमानों को नुकसान देने के लिए एक किस्म का घात था, मदीना में अब कौन सा अपना मरकज़ बनाए, सबको पता लग जाता। तो मस्जिद का नाम दे दो ताकि अंदर खाते हम करें, इसकी डिटेल्स आप बाद में पढ़ लें, लेकिन इस वक्त आपके साथ एक शेयरिंग शेयर करूँगी जो हमारे आपके साथियों में से किसी ने भेजी कि उनका इस आयत के साथ क्या ताल्लुक है, क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ लोगों की हिदायत का ज़रिया भी बन जाती हैं और कुछ लोगों को कुछ चीज़ें दूसरी तरफ ले आती हैं। तो इसमें आपका मेरा काम क्या है कि हम अपनी इस्लाह कर लें। ये लिखती हैं कि कुछ बहुत ही अच्छी दुआएं हैं, अल्लाह ताला इनके हक़ में भी ये कबूल फरमाए। कहती हैं कि काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी, पहले सिर्फ तीन नाम थे मेरे लिए, तारीख़ का एक हिस्सा। अब पे दर पे दौरे कुरान और सबीलुल जन्नाह के बाद ये नाम, ये मेरे लिए नाम नहीं बल्कि किरदार हैं जीते जागते। काब बिन मालिक से तो मुझे अपने बाप जैसी मोहब्बत महसूस होती है। ये तीनों जब शर्मिंदा नबी करीम के हुजूर पहुंचते हैं तो मैं इनकी शर्मिंदगी दिल ही में दिल में महसूस करती हूँ। इनके लरसते कांपते कदम जैसे मैं देख सकती हूँ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा हैं, अहकाम इलाही बर जुबाने नबी सुनने के मुंतजर हैं। मैं अब ये महसूस करती हूँ, ये लोगों को सलाम करते हैं, लोग मुंह फेर लेते हैं। मैं इस दर्द को महसूस करती हूँ और इन असहाब के दिल की तकलीफ़ भी समझ में आती है, जो इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर जवाब ना देकर महसूस करते होंगे। फिर जब फजर की नमाज में इनकी माफ़ी आसमानों से नाजिल होती है तो मैं बेतहाशर होती हूँ। मैं आज भी मदीना मुनव्वरा में हरम में बैठी सोचती हूँ, ये सऊदीया से हैं स्टूडेंट जो ये बात लिख रही हैं, हरम में बैठकर ये सोचती हूँ कि अबू बकर सिद्दीक कहाँ से भागे होंगे इनको खुशखबरी सुनाने। वो लम्हात इस मस्जिद के लिए कैसे खुशी से भरपूर होंगे जब आसमान से ये बशारत नाजिल हुई। इन तीनों के दिल ने इस खुशी को कैसे बर्दाश्त किया होगा। इनमें तो कुफर भी नहीं, मुनाफ़क़त भी नहीं, सच्चे मोमिन हैं, और बस सुस्ती ने इनको किस मुकाम पर खड़ा कर दिया। हमारी तो सारी ज़िंदगी सुस्ती में गुजर रही है। सच है कि झूठ? हम ये एक दो घंटे की क्लास लेके क्या तीर मार रहे हैं भाई? पिछले 20-21 घंटों का हिसाब किसके पास है? हमारी तो सारी ज़िंदगी सुस्ती में गुजर रही है, जबकि मुनाफ़क़त भी दिल ही दिल में कहीं मौजूद है, फिर हमारा क्या होगा? उस्ताज़ा जी, मेरे गफलत में डूबे दिल में इन रस्मी नामों को ज़िंदा किरदार बनाने में अल्लाह ताला ने आपको सबब बनाया, इसके लिए मैं सिर्फ़ आपके लिए दुआ ही कर सकती हूँ। अल्लाह ताला जन्नत में आपको इन सब का साथ नसीब फरमाए। और मैं इनको कहती हूँ कि आप सिर्फ़ मेरे लिए ये दुआ ना करें, मेरे सारे अंसारुल्लाह, मेरे साथ जितने लोग इसमें हैं उनके लिए भी ये दुआ कीजिए, क्योंकि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। मस्जिद दरार के बारे में भी सुन लीजिए। सूरह तौबा की तफसीर में जिक्र हुआ मस्जिद दरार का। मस्जिदें जो अल्लाह ताला का घर होती हैं, मस्जिद वो जगह जिसके लिए हदीसे मुबारका में आया कि अल्लाह ताला की पसंदीदा तरीन जगह मस्जिद है। मस्जिद जिसकी तामीर करने वाले के लिए जन्नत का वादा है, वही मस्जिद जब नीयत के खोट के साथ तामीर की जाए तो कुरान इसको बदतरीन मिसाल के साथ ता कयामत निशाने इबरत के तौर पे बयान कर देता है, ताकि हम जैसे लोग नीयतों की इसलाह कर लें। इस जुमले को लिखिएगा, ये मस्जिद दरार का पूरा वाक़या आपकी मेरी नीयत की इसलाह के लिए। दुरान तफसीर इस आयत पर जो बात सामने आई वो दिल को लर्जा देने वाली है। क्या ये जुमला है आपके पारे के तीम में? नेकी करना आसान और नेक बनना मुश्किल है। ज़रा चंद सेकंड तवक्कुफ करूँ ना तो आप इसको जज्ब करें। आज कितनी नेकियाँ हो रही हैं, किताबें भी मौजूद हैं आसान नेकियाँ, पढ़ लीजिए, जाकर ढूंढ के मिल जाएगी आपको। इतनी दफ़ा ये आयत पढ़ो, ये वजीफ़ा करो, ये दुआ करो, ये विर्द करो, जन्नत में इतने महाल, ये करो वो करो, भूखों को खाना खिलाओ, नेकियाँ बहुत हैं। आज नेकियाँ करने वाले भी अक्सर, सब नहीं, आप जैसे नहीं हैं सब, नेकियां करने वाले भी कुछ लोग नेक नहीं हैं। अल्लाह मुझे माफ़ करे और हमारे ऐबों पे पर्दे डाल दे। मस्जिद बनाना आसान, मस्जिद को आबाद करना मुश्किल है। रमज़ान में नेकी करना आसान और बकाया 11 माह खुद को वाक़ियातन नेक बनाकर रखना मुश्किल है। बात दिल को लग रही है कुछ ना कुछ? हाँ, रमज़ान में हम कितने नेक हो जाते हैं। बाद में क्या होगा, ईद की पार्टियों में क्या होगा, रमज़ान के बाद की शादियों में, मेहंदी और उबटन और कॉन्सर्ट्स में क्या होगा। रमज़ान में नेकी करना आसान और बकिया 11 माह खुद को वाक़ता नेक बनाकर रखना मुश्किल है। सदका देना आसान, लेकिन इस सदक़े की हिफाजत मुश्किल है। हम नेकियों के अंबार फटे हुए थैले में जमा करने वाले लोग हैं, यानी हमारे थैले में सुराख हैं जिसमें से नेकियां गिरती हैं। नेकियां करते जाते हैं और अपनी फसलें अपने ही हाथों जलाते जाते हैं, कभी गफलत करके, कभी गीबत करके, कभी दिल आज़ारी करके, कभी मुनाफ़त के साथ और कभी रियाकारी के सबब। क्या हमने कभी सोचा कि रमज़ान में नेकी करना इतना आसान और बकिया 11 माह इसी नेकी को इस्तकामत के साथ करते रहना मुश्किल क्यों है? रमज़ान में तिलावते कुरान आसान और इसके बाद मुश्किल क्यों? रमज़ान में नवाफिल आसान और बाद में गिरां क्यों? रमज़ान में सदका खैरात आसान, बाकी 11 महीने में मुश्किल क्यों? क्या रमज़ान का रब और बकिया 11 माह का रब अलग है? या एक जुमला बोल दो कि हम रमज़ानी मुस्लिम हैं कि रहमानी मुस्लिम हैं। इसके पीछे वही बात पोशीदा है कि हम नेकी तो आराम से कर लेते हैं लेकिन नेक नहीं बनते। वो कहते हैं ना, लगती है इसमें कुछ मेहनत ज़्यादा। जब ही पहली शवाल के चांद के साथ हमारी नेकियों का थैला अगले रमज़ान तक बंद हो जाता है, कुरान शेल्फ में सजा दिए जाते हैं और मुट्ठियाँ कस के बंद हो जाती हैं, फिर फी सबीलिल्लाह हमसे पैसे नहीं निकाले जाते। और इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात कि हमारे थैले फटे हुए हैं, हम अपनी जमा की हुई नेकियां हर गुजरते दिन के साथ गिराते चले जाते हैं और हमें खबर भी नहीं होती। अगर हम खुद से सवाल करें कि हम नेक क्यों नहीं बनते, इसका आसान सा जवाब ये है कि हमारी नियतों की दुरुस्तगी की ज़रूरत है। हम रमज़ान के रब की इबादत करते हैं और 11 माह के रब को अलग समझते हैं। हमारे जहन में 1 महीना नेकियां कर लेना काफ़ी है और इस तमाम सोच के अंदर जो बीज मौजूद है उस बीज में तकवा मौजूद नहीं। कोशिश कीजिए कि जो गिनती के चंद दिन बाकी रह गए हैं इसमें नेकियां नहीं करें। हैं, ये क्या कह दिया? उनमें नेकियां नहीं करें बल्कि उनमें नेक बनने की सच्ची कोशिश करें। और अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। क्या इस दौरे कुरान से आपको इसमें मदद मिल रही है? कितने लोग हैं जो गवाही देंगे कि ये रमज़ान आपको नेकियां करने से ज़्यादा नेक बनने पे माइल कर रहा है? हमने क्या सीखा? सुस्ती और तसाहुल से बचना है और तौबा करने में जल्दी करनी है। हम कमज़ोर हैं, हमसे गलतियाँ होंगी, इसलिए जहाँ सुस्ती हो गई, लिथार्जिक हो गए, डिली डेली का शिकार हो गए, फ़ौरन कह दे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। और रज़ा इलाही पाने के अमाल इस रुकू में से क्या मिले? नेकियों में सबकत करना है। हिजरत का मौका आए तो हिजरत करनी है। अंसारुल्लाह बनने का मौका आए तो अंसारुल्लाह बनना है। तस्किए का काम करना है। अल्लाह की रज़ा पर मसाजिद और मदारिस की बुनियादें रखनी है और बुनियादें बनना है। पाक रहना है, तौबा करनी है, सदका खैरात करना है और जो नेकियां करें उसको काफ़ी नहीं समझना। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो। ये था जी आज का हिस्सा, पूरे आज तक के इस हिस्से पे भारी है जो हम पढ़ चुके। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।